ओके गाइस, माय नेम इज फिजान एंड आई एम अ टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट।
और मेरा नाम शहवार अहमद है और मैं एक लेजर साइंटिस्ट हूँ।
और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टेक लॉग पॉडकास्ट नंबर 19। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो है स्टार्टअप कल्चर इन पाकिस्तान, जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन भी है कि पाकिस्तान में जो है स्टार्टअप कल्चर जो है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे कोई चीज़ हम एक्सप्लोर करते जाते हैं तो उस सिस्टम की जो है हमारे पास खामियां और खूबियां वाजे होती चली जाती हैं। और आज उन्हीं खामियों और खूबियों पर बात करने के लिए हमने अपने साथ जो है गेस्ट बुलाया है, हमारे दिली जिगरी दोस्त कीट के हमारे बैचमेट असद जब्बा। और इनके साथ ही कंपटीशन करके हम जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और माशाल्लाह से असद जो हैं इनकी को फाउंडर हैं एक कंपनी के पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान के ही स्टार्टअप इकोसिस्टम से निकली है। तो इनसे ज़्यादा बेहतर शायद कोई नहीं जानता हो कि एक स्टार्टअप को पाकिस्तान में ग्रो करना कि क्या क्या बोलते हैं, क्या आपके पास एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इनकी कंपनी का नाम है ग्रिड 3D और ये काम करते हैं 3D प्रिंटिंग्स के ऊपर। और बाकी जो है अगर मैं सब बता दूंगा तो इनसे क्या पूछेंगे। तो जी असद, वेलकम।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग?
अस्सलाम, ठीक है, आप सुनाएं।
हम बिल्कुल जबरदस्त।
तो असद भाई, अगर कुछ मिसिंग हो गया हो हमसे आपके इंट्रोडक्शन में तो आप ऐड कर सकते हैं। वैसे
हाँ, मेरे ख्याल से तो इंट्रोडक्शन तो अभी नाम का ही दिया है। तो बेसिकली मैं जो हूँ फैजान और शहवार का समझ लें बहुत अच्छा दोस्त है चुका। हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी कर चुके हैं कीट में रहते हुए। तो इसके साथ साथ ही मैं जो है ग्रिड 3D रन करता हूँ पाकिस्तान में, और जिसमें हम जो है बेसिकली हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट फर्म है जिसमें हम लोग फ्रॉम आइडिएशन टू रियलाइजेशन जो आप सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारी कंपनी की टैगलाइन है शेपिंग योर इमेजिनेशन। तो हम ये कहते हैं अपनी कंपनी में, इफ़ यू कैन थिंक इट देन वी कैन मेक इट। सो हम उसके अंदर जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ साथ 3D प्रिंटिंग की सर्विसेज हैं, और 3D प्रिंटर्स हम जो है वो सेल करते हैं, इसके उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि आने वाले लोग जो है जो यंग जनरेशन है जो प्रोटोटाइपिंग नहीं करना जानती और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो आके हमसे सर्विसेज भी ले सकती हैं और हमसे मशीनरी भी परचेज कर सकती हैं ताकि अपना काम तेज़ी से कर सकें।
ज़बरदस्त। तो असद, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि ग्रिड 3D से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि तुम्हारा स्टार्टअप है, तो कैसे आइडिया आया? और सबसे पहले आइडिया से ही स्टार्ट करते हैं कि आइडिया कैसे आया, फिर आगे चल के पूछेंगे कि किस तरीके से आपने जो इसको एस्टेब्लिश किया।
हाँ, आपने वही सवाल पूछा है जो तमाम लोग पूछते हैं कि आइडिया कैसे आता है। आइडिया नहीं आ रहा मुझे, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। तो देखें, आइडिया ना आपके अराउंड में जो लोग होते हैं ना उनसे ही आपको आता है। बेसिकली हमारा स्टार्ट कैसे हुआ था कि हमारे एक जानने वाले जगह है वो टर्की गए हुए थे। तो टर्की में आपको पता है सीरिया की बॉर्डर पे बहुत ज्यादा क्लैशेस हो रहे थे और बहुत ज्यादा लोग जो है वहाँ जख्मी थे। तो वो बेसिकली एक डॉक्टर थे, तो वो एज अ मेडिकल सपोर्ट स्टाफ गए हुए थे। तो उन्होंने क्या देखा वहाँ पे कि बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंट नीड्स हैं उनकी, जिसमें से एक नीड कॉमन ये थी कि काफी लोगों के जो है हाथ पैर ज़ाया हो गए थे। तो उन्होंने वहाँ देखा कि बहुत सारी चीज इस तरह की हाथ पैर बनाने वाले के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो लोग क्या कर रहे थे कि वो 3D प्रिंटर को यूज करते हुए उनके लिए प्रोडक्ट्स डेवलप करके उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे। तो जब वो आए तो उन्होंने हमसे सारे एक्सपीरियंस शेयर किया और उन्होंने हमें प्रोवोक किया कि आप लोग भी इस चीज़ के ऊपर काम करें क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत यहाँ पे है। तो हमने जब इसकी वर्किंग शुरू की तो हम जो है बहुत सारे सरप्राइज हो गए। वी आर एक्चुअली लिटरली सरप्राइज दैट एंड मैनी ऑफ द थिंग्स वर बींग इम्पोर्टेड एंड नॉट बींग डेवेलप इन पाकिस्तान वैन देर वॉज अ ह्यूज मार्केट हेयर टू एक्चुअली प्रोमोट दीज एंड टू सप्लाई दीज काइंड ऑफ प्रोस्थेटिक्स विच वी कॉल आर्टिफिशियल हैंड्स, आर्टिफिशियल लेग्स। तो हमने वहां से फिर शुरू किया कि किस तरीके से हम इसको बनाया जा सकता है, किस तरीके से लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो हमने जब उसको सर्चिंग की तो हमने देखा कि काफी लोग जो है वो लेग्स पे काम कर रहे हैं लेकिन हैंड्स पे कोई नहीं कर रहा। और हैंड आपको पता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है। अगर मैं आज आपको बोलूँ आप अपने हाथ पे ना टेप लगा लें या बांध लें और पूरा दिन गुजारें तो आपको उसकी अहमियत का अंदाजा होगा। क्योंकि जब हम इस तरह नहीं करते तो हमें पता ही नहीं होता कि क्या इसकी अहमियत है। तो जब हमने भी अपने साथ ये एक्टिविटी की तो हमने उसको बड़ा हमने बोला कि हाउ ब्लेस्ड वी आर कि वी हैव फुली फंक्शनल हैंड्स विद अस। तो जब हमने इस पे वर्किंग की तो हमें पता चला कि इसमें तो कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रही और हम थे इंजीनियर्स, हमारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम सामने आ जाए उसको हमें सॉल्व किए बगैर चैन नहीं मिलता। तो जब हमने ये देखा तो हमने वर्किंग शुरू की तो हमने एक्सप्लोर किया कि इसके अंदर एक कम्युनिटी है, इनेबल कम्युनिटी है जो पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है। तो हम पाकिस्तान में उसके चैप्टर को रन करते हैं इनेबल कम्युनिटी के, और उसमें हम क्या करते हैं कि हम 3D प्रिंटर की टेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियल हैंड्स डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो क्या किया कि हैंड डेवलप करके डिज़ाइन किया खुद, जो भी हमने डिज़ाइनिंग स्किल्स थोड़ी बहुत सीखी थी ऑनलाइन, क्योंकि हमारी मेरी फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स थी तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें मैकेनिकल डिज़ाइनिंग कोई बहुत ज़्यादा सिखाई नहीं जाती है, सब एक ओवर वे लुक दिया जाता है। तो जब हमने ऑनलाइन सीखी तो मैं पता लगा कि इसकी नीड बहुत है, इसकी नीड जो है इसकी स्किल्स जो है वो आनी चाहिए, और इसको अगर ग्रो करना है अपने आप को, अपनी स्किल को ग्रो करना है तो हमें ये बहुत ज़रूरी है आना। तो जब हमने फर्स्ट टाइम ये डेवलप किया उसके बाद हमने 3D प्रिंट करवाया, एक लोकल कंपनी थी वहाँ पे तो उससे हमने 3D प्रिंट कराया, लेकिन हमने बोला कि अब हमें तो ये हर वक्त करवाना है, बार बार बनाना है, इसमें रिसर्च बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एवरी हैंड फिट्स ऑल। सो व्हाट वी डू इज़ वी डिज़ाइन वी डेवलप अ कस्टमाइज्ड टेलर्ड हैंड फॉर एवरी पेशेंट दैट वी हैव।
जबरदस्त।
सो उस बदौलत हमें 3D प्रिंटिंग का पता चला और 3D प्रिंटर का पता चला। जब 3D प्रिंटर का पता चला तो हमें ये भी पता चला कि 3D प्रिंटर में तो जो है वो आपको NOC चाहिए।
एग्जैक्टली।
मैं ये क्वेश्चन वैसे ना
क्या भला है,
सॉरी मैं ये क्वेश्चन करने वाला था कि ये जो ग्रिड 3D है, मतलब मैं सॉरी ट्रप कर दिया, लेकिन मैं ये क्वेश्चन करने वाला था कि ये जो ग्रिड 3D है ये स्टार्ट हो कैसे गया जब यहाँ 3D प्रिंटर्स तो लाने की इजाज़त नहीं है, लाइक कोई बिल्ड तो नहीं कर रहा ना पाकिस्तान में, आप इम्पोर्ट ही करोगे वो, उसकी तो इजाज़त ही नहीं है, तो वो कैसे हुआ था फेज?
अच्छा, तो बेसिकली हमें ना NOC चाहिए होता है। मैं शवाल आपका क्वेश्चन जो है मैं आगे जवाब देता हूँ।
जरूर जरूर।
तो बेसिकली हमने जब 3D प्रिंटर्स हमने लोकली यहाँ पे एक आउटसाइड रावलपिंडी एक बंदा था वो सेल कर रहा था, तो हमने वो फर्स्ट टाइम परचेज किया हमारे एक मेंटोर की हेल्प से। तो जब हमने उसको यूज़ करना शुरू किया, हमने सीखा, हमें तो पता ही नहीं था कि अंदाज़ा ही नहीं था कि ये टेक्नोलॉजी जो है किस तरीके से पूरा डायमेंशन चेंज कर देगी डेवलपमेंट का। तो जब हमने इसको यूज़ किया तो हमने उस वक्त से जो है वो प्रोस्थेटिक बनाना शुरू होते गए। फिर हम इस आइडिया को लेके गए दी नेस्ट आयो के अंदर जो कराची में एक इनक्यूबेटर है फंडेड बाय गूगल एंड दैट टाइम वाज फंडेड बाय सैमसंग आल्सो। तो हमने जब वहाँ पे पिच किया तो लोगों को भी बड़ा अमेजिंग लगा आइडिया और लगा कि हाँ इसमें पोटेंशियल है। तो वहाँ पे हम इनक्यूबेट हो गए 6 महीने के लिए। तो उन 6 महीने में हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स को रब्ता किया, बहुत सारे लोगों को बताया, तो वहाँ से हमारी ये प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई कि जब बाय द एंड ऑफ द इंक्यूबेशन साइकिल वी वर फंडेड बाय सैमसंग पाकिस्तान फॉर प्रोवाइडिंग 100 पेयर्स ऑफ हैंड टू ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। तो वहाँ से हमने बेसिकली स्टार्ट लिया कि किस तरह एक आइडिया को हमने वहाँ पे पिच किया और फिर हम एक कंपनी में ट्रांसफॉर्म हुए। तो वहीं से हमें जो है फिर नई डायमेंशन आना शुरू हो गई कि हमें लोग 3D प्रिंटिंग सर्विसेज के लिए भी कॉन्टैक्ट करते थे, 3D प्रिंटर्स के लिए भी कॉन्टैक्ट करते थे, हैंड्स के लिए तो ऑलरेडी कर ही रहे थे। तो दैट वाज आवर स्टार एंड इट वाज बैक इन
2016। तो मेरा क्वेश्चन तो चलो खैर वैलिड है, मैं रिवाइंड कराऊं कि मेरे क्वेश्चन का जवाब भी है कि NOC कैसे लिया, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं यहाँ पे 3D प्रिंटर से रिलेटेड बहुत सारे न्यू स्टार्टअप्स के पीछे जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम गवर्नमेंट की ये NOCs और इन चक्रों की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। एक तो क्वेश्चन ये वैलिड है बहुत कि NOC का क्या प्रोसीजर है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा इसको, कि जो तुम लोगों ने ग्रिड 3D के प्लेटफॉर्म से चैरिटी वर्क किया, वो बहुत एक बड़ी बात थी। जैसे मैंने बहुत सारी तुम लोग की पोस्ट को फॉलो कर रहा था कि बहुत सारी तुम लोग थर में गए थे और भी बहुत सारी जगह गए थे, तुमने लोगों की हेल्प की प्रोस्थेटिक्स डेवलप करने में, खास करके फार्मर्स और इस तरह के लोगों की, तो वो भी थोड़ा सा पोर्शन अगर तुम हाईलाइट कर दो।
एग्जैक्टली।
अच्छा, तो बेसिकली प्रोस्थेटिक्स के अंदर जो ना मेजॉरिटी जो अफेक्टेड लोग हैं वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। तो हमने जब स्टार्ट किया था ये सैमसंग का प्रोजेक्ट एक साल तक का था, तो उस वक्त हमने ये एक्सप्लोर कर लिया था कि पीपल कैन नॉट पे फॉर दिस आर्टिफिशियल हैंड, ठीक है, क्योंकि दे लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। सो वी बेसिकली कोलैबोरेटेड विद मल्टीपल एनजीओस, मल्टीपल हॉस्पिटल्स अक्रॉस पाकिस्तान विच स्पॉन्सर देम एंड दे गेट द हैंड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय अस फ्रॉम their sponsorship. So this is how we are serving the nation of Pakistan, and we went to different places like Hyderabad, Kharpur, because most of the people that are living below the poverty line are laborers. They work from hand to mouth and they work in industries which makes them बेसिकली उनको क्या करते हैं उनकी जो मशीनरी वगैरह यूज करते हैं, तो यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग तो दी नहीं जाती, आपको पता है ट्रेनिंग नहीं दी जाती ना, मशीनरी में कोई सेफ्टी ऑप्शन होता है। तो हमारी जो सबसे ज्यादा हाथ एग्रीकल्चर नेशन, एग्रीकल्चर कंट्री हमारा, तो सबसे ज्यादा हमारी जो है वो ये गंदम और राइस और फॉडर्स और इस तरह की प्रिपेरेशन में हमारी लेबर तबका लगा हुआ है। तो उसमें एक चारा काटने की मशीन होती है, तो उसमें लोगों के हाथ आ जाते हैं, उसमें कोई सेफ्टी फीचर नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी एक अलमिया है, हमने तो एक वक्त में ये सोचा था क्या हम ये भी बनाना शुरू कर दें मशीन भी, कि उसके अंदर सेफ्टी फीचर डालें,
मतलब उसमें एक स्विच लगा दें, एक सेफ्टी
स्विच लगा दें, एक प्रॉपर कोई एक सेफ्टी सिस्टम डालें, कि हमने जब इतना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है तो उसको कहीं इम्प्लीमेंट तो करें। लेकिन यू नो एवरी वन हैज स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमने बहुत सारे लोगों को ये बताया भी, बहुत सारे लोग जो है उस ऊपर कहा कि हम करेंगे देखेंगे, लेकिन वी डिडंट फॉलो, वी वर डूइंग द आवर वर्क, के हम हैंड्स बना के लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे। तो मेजर जो है आपका जो है मोल्ड मशीन हो गई, आपका जो शाफ कटर मशीन हो गई जिसमें चारा कटता है, ठीक है, आपके एक्सीडेंट्स हो गए या बाय बर्थ, इन चार वजह से जो है ना वो हैंड्स बहुत ज़ाया हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग फिर ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो बेसिकली दे रीच टू अस by coming through some hospital, some NGOs, so we make them the hands. अच्छा, जहाँ तक बात आपकी रही NOC की, तो NOC basically simple सा तरीका है, Ministry of Interior जो है उसकी website पर आप जाएँ, क्योंकि digital platform आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो use किया जा रहा है, especially after the pandemic. So बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो online available हैं, आप उस पर जाएँ, form download करें और sign कर दें। Meanwhile, आप जब तक जो है वो इम्पोर्ट करेंगे तो आप वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से लेटर ले लेंगे और आपको वो NOC मिल जाएगी। तो आप बेसिकली NOC क्या है, बेसिकली NOC इज नथिंग बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट यूजिंग द प्रिंटर्स फॉर मेकिंग सम काइंड ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशन, दैट इज इट, ठीक है ना। आप बस आपने एक तरह समझ लें एक ओथ ले लिया कि हम इससे ये चीज़ नहीं बनाएंगे, बिकॉज यू नो 3D प्रिंटर में तो जो आप सोच सकते हैं वो बन सकता है, ठीक है, लेकिन बात सारी है कि वो वन, अब एक चीज प्लास्टिक की है, वो प्लास्टिक की एक चीज जो है वो कितनी कारामद होगी। तो बेसिकली इसका एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर चैनल है नहीं, इस वजह से जो है बहुत ज्यादा चीजों को जो है ना फिर एग्जिजरेट किया हुआ है कि भाई इससे तो ये हो जाता है, इससे तो वो हो जाता है। लेकिन बात सारी है कि अगर एक प्रॉपर चैनल मैकेनिज्म के थ्रू लाया जाए तो इससे जो रेवोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती है, क्योंकि आपको पता है पैंडेमिक के बाद जो है इम्पोर्ट करना डिलेज, शिपिंग डिलेज और बहुत ज्यादा चीजें बढ़ गई हैं, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है, ओवरऑल टॉल जो हुआ है पूरे मार्केट में। तो इस वजह से 3D प्रिंटर तो ऐसी चीज है कि अगर आपके पास है तो आप उससे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं।
Exactly. बहुत सारे जो है ना क्या बोलते, काफ़ी लंबी क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन दी असद ने, इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, और लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि टॉपिक से रिलेटेड करते हैं इसको, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो हो गया और माशाल्लाह जबरदस्त काम कर रहे हैं सर।
सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जल्दी से अगर ये लास्ट क्वेश्चन ले लें उसके बाद हम मेनली टॉपिक की तरफ चले जाएंगे। ये कोई क्वेश्चन आया हुआ है, अगर तुम इसको दिखा दो।
अच्छा, इसमें लिखा हुआ है इज देयर एनी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड और एनी रेगुलेशन गवर्निंग द प्रोडक्ट्स और आइटम्स प्रिंटेड विद अ 3D प्रिंटर। बेसिकली सिर्फ 3D प्रिंटर की इंपोर्ट पर रेगुलेशन है, जो मैंने आपसे अर्ज किया कि आपको NOC चाहिए होता है, और बाकी इसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं, और ऑब्वियसली आपने एक ओथ ले लिया है तभी आपको NOC प्रोवाइड की गई है, तो नाउ यू आर टेकिंग द ओथ फॉर द लाइफ अंटिल यू हैव द 3D प्रिंटर विद यू, सो यू कैन नॉट प्रिंट एनी आइटम्स दैट आर हार्मफुल।
तो ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गई, लेकिन यहाँ एक छोटा सा एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे नजर आया, वो ये नजर आया कि पेंडेमिक की वजह से काफी डिलीवरियाँ डिलेज हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन पाकिस्तानियों को इतनी अकल तो आना शुरू हो गई कि अब हमें भी कुछ बनाना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये हुई कि उन्होंने जो है वो हर चीज डिजिटलाइज करना शुरू कर दी फाइनली।
तो एक अच्छा पॉइंट भी हुआ जिस तरीके से। चलो फिर दोबारा से टॉपिक की तरफ आते, बल्कि ये भी टॉपिक का एक हिस्सा ही था, आगे आने वाले सवालों में से मेरा एक सवाल था। लेकिन अब असद जो है, मतलब मेरा जो पूरा कंसर्न है ना इस पूरी चीज़ के अंदर कि टॉपिक क्या बोलते हैं, जो तुम्हारे स्टार्टअप है वो तुमने ग्रो किया, सही है, और वो क्या मुश्किलात थी जो तुमने फेस की इनिशियल स्टेजेस पे, और उसके बाद वो क्या सोल्यूशन है जो तुमने उनको काउंटर करने के लिए किया।
अच्छा देखें, एक स्टार्टअप के लिए सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है, सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है कि वो कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो हमें पता था कि अच्छा फेल हो जाएंगे तो भाई क्या होगा, फेल हो जाएंगे तो भाई दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी, जो हमारे साथ वाले लोग हैं वो आगे निकल जाएंगे, जो है आपको माँ बाप आपको जो है वो बुरा भला कहेंगे, रोज आपके अलग तफरी बजाएंगे। तो
यार तुम ना नॉस्टैल्जिया में लेके जा रहे हो हमें PF कीट की यादों में।
तो देखो ये होता है कि फेलियर का डर होता है, ठीक है। अब या तो आप डरते डरते पूरी जिंदगी गुजार दो, या तो एक बार जो है फेल होके जो है ना आगे बढ़ जाओ। तो ये हमने जो है ना शुरू में ही, हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी ने ना इतना सिखा दिया था कि आप जो है वो डर जाओगे तो कोई कहीं के नहीं रहोगे। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर वो काम यूनिवर्सिटी में किया था जिस वजह से ये एक एटीट्यूड डेवलप होगा कि बड़ा काम करना है।
Exactly.
बड़ा काम करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। आप अभी नहीं रिस्क लोगे तो आगे जो है कभी भी आप रिस्क नहीं ले सकोगे। तो बात सारी ये है कि आपने जो है वो रिस्क लेना है, और अगर आप रिस्क लेंगे तो ही आपको उसका रिटर्न मिलेगा। वो कहते हैं ना इन्वेस्टर के उसमें कि द हायर टेक द रिस्क द हायर द रिटर्न यू गेट।
एग्जैक्टली।
तो बेसिकली देखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है स्टार्टअप्स जो फाउंडर्स होते हैं उनकी, कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते या रिस्क कम से कम लेना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपने जो है वो रिस्क लेना है, हमने भी जो है वो रिस्क लिया था, हमने भी जो है अपनी मैंने खुद अपनी पर्सनल जॉब छोड़ी थी कि हमें जो है वो ये एक दिख रहा था कि पोटेंशियल है इस चीज़ के अंदर और इसको जो है आगे लेके जाना चाहिए। तो उसके लिए जो है जॉब छोड़ी, जॉब छोड़ने के बाद ये हमें लकीली चांस मिला कि नेक्स्ट टाइम हम इंक्यूबेट हो गए, साथ मिलने वाले लोग मिल गए, ठीक है। अब होता ये कि आप जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं कि आप अगर उन्हीं लोगों में बैठे हैं जो आपको जो है वो यही बोलते रहे कि तुम नहीं कर सकते, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपके एनवायरमेंट से आप जो है मोटिवेट भी होते हो और डीमोटिवेट भी होते हो। लेकिन इट्स योर चॉइस व्हाट यू हैव सेलेक्टेड, कि किन लोगों में आपने बैठना है, किन लोगों में आपने नहीं बैठना। तो अगर आपने बड़ा काम करना होता है ना, तो आपको बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना चाहिए। तो जब बड़े लोगों के साथ बैठोगे तो आप जो है बड़े काम कर पाओगे, क्योंकि आपकी सोच वैसी डेवलप होगी। सो जब आपका माइंडसेट ऐसा डेवलप हो जाएगा तभी आप जो है वो बड़े काम कर पाएंगे।
बड़े लड़कों के साथ तब भी खेलने को मना करती हैं।
अच्छा मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आप बड़े लोगों से मुराद राजा बिलाल हैं, जो कि मैसेज भी कर रहे हैं यहाँ पर।
वो बहुत बड़े लोग हैं।
सही, जी कंटिन्यू करो सर।
अच्छा तो बात सारी है कि आपने जो है वो अपने जो है सर्कल है अपना, और जो है वो इस तरह का रखना है कि आप जो है जो काम अचीव करना चाहते हैं वो उस तरह के लोगों में बैठे जो सिमिलर किसी ना किसी तरह अपने ड्रीम्स को अपने काम को बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं। तो एक सबसे बड़ी जो थी हिंड्रेंस थी वो ये थी कि कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे लोग, तो लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हमारा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, हम तो हर वक्त प्रोजेक्ट बनाते रहते, प्रोडक्ट तो नहीं बनाया कभी, ठीक है, तो कभी प्रोडक्ट नहीं बनाया तो इसका मतलब कभी नहीं बना सकते क्या, ठीक है। एक एक चीज जो है वो मैंने सीखी थी कि आस्क टू क्वेश्चंस टू यू व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, व्हाई एंड व्हाई नॉट, ठीक है, तो क्यों क्यों कर रहे हो और क्यों नहीं कर रहे, वजह क्या है, ठीक है। तो ये चीज अगर आप अपने आप से पूछने लग जाएंगे ना तो आपकी तमाम चॉइसेस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है, आपको जो है बहुत ज्यादा फोकस हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा जो है वो चीजों को देखभाल के जिसमें आपको टाइम ज्यादा लगता है तो टाइम कम लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि व्हाट वी मिस, मैं अपने आप बात करता हूँ कि मैंने क्या मिस किया था, मैं सवाल नहीं पूछता था अपने आप से, जब मैंने सवाल पूछना शुरू किए तो मुझे इसके जवाब मिलना आसान हो गए, क्योंकि जवाब तो मेरे इर्द गिर्द ही है, जवाब का मसला नहीं होता, मसला होता है सवाल का, अगर किसी चीज का सवाल है ना तो उसका जवाब लाजमी होगा, ठीक है,
वो यही थ्योरी है ना,
कुरान में भी फरमाया ना कि अगर किसी कोई चीज कोई मुसीबत मैंने उतारी है जमीन पे तो उसकी उसका सलूशन मैंने पहले ही दे दिया है, तो इंसान को तकलीफ इसलिए क्या है कि वो उसके हल ढूंढे।
बिल्कुल,
तो एक बात ये थी कि प्रोडक्ट फेल तो नहीं हो जाएगा कहीं, ठीक है, हमें पैसे कौन देगा, ठीक है, हम अपने पैसे खुद लगाएंगे तो क्या पता हमें सपोर्ट करेगा नहीं करेगा कोई, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ ग्रेट पीपल अराउंड मी इंक्लूडिंग माय को-फाउंडर एंड माय फैमिली, ठीक है, माय फ्रेंड्स दैट मोटिवेटेड मी के तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुमने स्टेप तो लिया, हम तो स्टेप नहीं ले रहे, तो That was one of the boosters that made me on the track. तो एक ये तो फिर इसमें आपको पता है उस वक्त evolve कर रहा था पाकिस्तानी startup culture, तो बहुत सारे incubators वगैरह थे जिसमें कराची में हम lucky थे कि हम एक अच्छे city में रहते हैं तो हमें वहाँ incubator मिल गया, तो इस वजह से हमें फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा boost मिला, फिर लोग मिलते गए और काम चलता गया,
कारवां बनता गया,
कारवां बनता गया। चलिए कुछ पूछना है या फिर मैं पूछूं?
हाँ, तो इनक्यूबेटर्स पाकिस्तान में इसका इकोसिस्टम क्या है? मुझे देखने को बहुत मिलते हैं इनक्यूबेटर्स, लेकिन पर्सनली ऐसा कोई एनवायरनमेंट जनरेट नहीं हुआ। जस्ट लाइक मैं अगर एक जर्मनी की एग्जांपल लूँ, जर्मनी के जो आम लोग हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं, उनको ये बात पता है कि स्टार्टअप जैसी कोई चीज़ होती है, इनक्यूबेटर जैसी कोई चीज़ होती है। पाकिस्तान में बात करें, इनक्यूबेटर्स का सिर्फ ज़्यादातर उन्हीं को पता होता है जिन्होंने एक अच्छी डिग्रियाँ की हुई है या उनका एनवायरनमेंट ऐसा था। तो पाकिस्तान में जो इनक्यूबेटर्स हैं ये क्यों नहीं मतलब शाइन आउट कर पा रहे, इनकी वजह से बहुत एक एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ स्टार्टअप्स क्यों नहीं जनरेट हो पा रहे?
अच्छा देखें, इनक्यूबेटर्स तो मैं जब बात करूँ ना, जब 2016 में हम भी थे तो बहुत कम इनक्यूबेटर्स थे उस वक्त भी, ठीक है, लेकिन हमने जब अप्रोच किया, मैंने आपसे वही वाली बात की ना अभी, मैं उस बात को लिंक करता हूँ कि जब आपको जो है सवाल पता होगा जवाब मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप वन हैज टू हैव have to be very conscious, like उसको तजस्सुस होना चाहिए, excitement होनी चाहिए कि वो जो काम कर रहा है वो उसका जवाब उसको मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपको तजस्सुस होगा तो जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। तो उस वक्त हमें भी किसी ने बताया नहीं था, हम सर्च कर रहे थे कि कोई ऐसी कंपनी है, क्योंकि देखें हम न्यूज़ फॉलो करते हैं, डिजिटल मीडिया फॉलो करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हमें बाहर से तो पता चलती ही रहती हैं, ठीक है, लेकिन जब हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया तो हमें पता चला कि हाँ यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें। तो उस वक्त इनक्यूबेटर्स जो है कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी थे, ठीक है, जैसे आप कराची से लेकर लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर वगैरह पे ले लें तो वहाँ पे थे इनक्यूबेटर्स, ठीक है, और वो काम कर रहे थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा शाइन नहीं हुए थे, क्योंकि इट वॉज इन अ वेरी अर्ली स्टेज। जब कोई चीज अर्ली स्टेज में होती है तो लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी बहुत स्लो होती है,
बिल्कुल,
लेकिन उसको देखने जब आप वो चीज ग्रो करती है, जब लोगों को पता चलता है कि यहाँ से ये चीज निकली है और इस तरीके से प्रोग्रेस ले गई है, तो टाइम लगता है इस चीज का। अब आपको पता है एक कंपनी एक नया इनोवेशन लेके आनी है आपको पाकिस्तानी इकोसिस्टम में, इट्स नॉट वेरी इजी टू बी इनोवेटिव इन द पाकिस्तानी इकोसिस्टम। एट दैट टाइम इट वॉज नॉट, बट इट इज राइट नाउ बिकॉज पेंडेमिक वॉज इज अ ब्लेसिंग इन अ डिसगाइज आई वुड से।
बिल्कुल,
इट हैज shown its potential that what technology can do and what technology can make you do. So you have to have about पहले कहते थे ना कि हम जब पढ़ते थे हमें कहते थे यार बच्चे को अंग्रेजी आनी चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए लाजमी है। अब हम अपने बच्चों को कहेंगे कि तुम्हें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तुम्हें जो है ये तमाम चीजें AI पता होनी चाहिए।
Exactly.
तो इसकी वजह वही है कि ये आपके जो है ना डेली चीजों में चल रहा है, आपको डेटा एनालाइज करना चाहिए, एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, जिसकी बेस पे आपने बिजनेस डिसीजंस लेने। तो जब आपको काम आएगा तभी तो आप बिजनेस डिसीजंस लेंगे, डिसीजंस डेटा के बगैर तो आप लेना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि एवरीवन हैज टू हैव सम सॉर्ट ऑफ फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ देम टू शो देयर पीपल, देयर टीम्स, देयर इन्वेस्टर्स, देयर कस्टमर्स कि भाई ये है तो हम ये कर रहे हैं तो इसका पोटेंशियल ये है। तो इस बेसिकली इनक्यूबेटर्स का जो मकसद है ना, मैं दो चीजों में मैं समझता हूँ होता है। एक होता है आपकी नेटवर्किंग, जिसके थ्रू आप अच्छे नेटवर्क्स बनाते हैं, ज्यादातर लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज ग्रो की, मुख्तलिफ शहरों में गए, ठीक है, राइट लोगों से राइट टाइम पे मिलना इनक्यूबेटर की जो है वो फायदा मंद है, ठीक है। फिर आपको जो है सेल्फ अपने तरह के माइंड सेट लोग मिलते हैं तो आपको मोटिवेशन होती है, ठीक है। अब मुझे याद नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी के बाद और कितने लोग जो है अभी तक कर रहे हैं, लेकिन अब आपने अगर ये काम करना है तो आपने तो बैठना है ना उन लोगों में जिन जो ये काम कर रहे हैं।
Exactly.
Because if you are not sitting with them, then आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या मोटिवेशन होती है, किस तरीके से चीजों को लेके जा रहे थे, क्या प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मौजूद है, ठीक है। अकाउंटिंग फाइनेंस नहीं आती थी लेकिन जब काम किया तो समझ चला कि अकाउंटिंग फाइनेंस जो है वो कितनी जरूरी है, ठीक है। ये इनक्यूबेटर्स में मुख्तलिफ छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड लोग बैठे हुए होते हैं कि ये जो है अकाउंटिंग का बंदा है, ये जो है वो फाइनेंस में अच्छा है, ये जो है वो ग्राफिक्स में अच्छा है, ये जो है वो मैकेनिकल स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है, ये मैनेजमेंट अच्छी करता है। तो आपको बेसिकली ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो आपकी टीम का खुद पार्ट बन जाते हैं। So you are not getting an employee, but you are getting a team member. And that is all because you're sitting with the right people. And these kind of spaces are very much needed in Pakistan. Because in tarah ki spaces mein hum ideas kaun discuss karte hain? Sherry, last time humne idea kaun discuss kiya tha jab aap Pakistan aaye the to?
यार वो तो बहुत ही कोई वीर्ड
एक्सपीरियंस।
नहीं, चाय का ढाबा नहीं था वो, थोड़ा सा एडवांस था, रबी की गाड़ी में डिस्कस किया था।
सही सही बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करूंगा सच से कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत मैटर करता है, और इनक्यूबेशन सेंटर के अंदर जो है आपको वो एनवायरनमेंट मिलता है कि जहाँ पर लोग इनोवेशन कर रहे हैं, एक हसल चल रही है, सही है, टेक्नोलॉजी के लिए, इनोवेशन के लिए, और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं। आपकी जो है वो क्या बोलते हैं छोटे छोटे सेशंस हो रहे हैं जिसके अंदर आपको अकाउंटिंग सिखाई जा रही है, फाइनेंस, जो फाइनेंस की बात की स्पेशली पाकिस्तानी, स्पेशली हम लोग इंजीनियर्स, सही है, फाइनेंस फाइनेंसिंग की जो नॉलेज है ना हमारी बहुत कम होती है, क्योंकि मैंने खुद इतना स्टार्टअप स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि हाँ यार फाइनेंसिस कितना इंपॉर्टेंट है और वो टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात की असद ने कि एक इंजीनियरिंग एक टेक्निकल, जिस तरीके से नॉन टेक्निकल फाउंडर्स के लिए इंजीनियरिंग पार्ट मुश्किल होता है, इसी तरीके से टेक्निकल फाउंडर्स के लिए नॉन इंजीनियरिंग पार्ट जो होता है वो मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए होते हैं स्पेशलाइज्ड लोग जो कि हमें इंक्यूबेशन सेंटर्स में जो है वो इजीली मिल जाते हैं। अच्छा असद, ये तो मैंने थोड़ा सा एक ब्रीफली बता दिया, अब जो है ना मैं इसको डिस्कशन को लेकर जाऊंगा पाकिस्तानी इन्वायरमेंट पे। सही, दो चीज़ें हैं जो जहन में आती हैं मेरे, एक तो ये होता है कल्चरल बिलीव जो होता है, जिस तरीके तूने बताया कि घर वाले, एक बच्चा जो होता है भाई वो इंजीनियर ही बनेगा और उसने जो है वो जॉब करनी है, अगर वो जॉब नहीं करता तो घर वाले थोड़ा सा नाराज भी होते हैं। तुम्हारे घर वाले काफ़ी सपोर्टिव थे लेकिन हर तमाम केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोग जो है वो उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, और ये भी होता है कि एक कमाने वाला होता है और पांच खाने वाले होते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन होती है पाकिस्तान में, तो उसमें रिस्क लेने का जो है वो काफ़ी मुश्किल रहता है। तो उसे ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। दूसरी चीज़, दूसरा सवाल, हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स जो हैं एज अ पाकिस्तानी, सही है, उसके ऊपर तुम्हारे क्या कॉमेंट्स हैं, और किस तरीके से कंपनी को अगर स्केल करना हो, मुझे क्योंकि मैंने ये देखा है कि कंपनीज बन तो जाती है, स्केल नहीं हो पाती पाकिस्तान में, सही। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एक निहारी वाला है, वो पिछले 40 साल से उसकी एक ही दुकान है, वो एक ही निहारी वाला है, वो स्केल नहीं कर सका। उसकी जगह पे अगर तुम सॉल्ट बे को देख लो, जो जैसे सॉल्ट फेंकता है, सही, बंदा जो है उसने पूरी दुनिया में अपने, मेरे ख्याल से 2 या 3 साल के अंदर पूरी दुनिया में उसने अपनी जो है वो फ्रेंचाइजेस खोल ली है। तो क्या जावेद निहारी साबरी निहारी वाली नहीं खोल सकते इस तरीके से? तो एक माइंड सेट है, एक डीएनए के अंदर एक चीज है, उस चीज को कैसे देखते हो तुम?
अच्छा आपने 3 सवाल कर लिए, पहला सवाल क्या था, मुझे रिकॉर्ड भी करा दे।
अच्छा पहला सवाल ये है कि पहले तो मैंने क्या बोलते हैं डिस्क्राइब किया ना एनवायरनमेंट को क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा जो पहला सवाल था वो ये था कल्चरल बिलीफ के ऊपर, कि घर वाले एक आस लगा के बैठे हुए होते हैं कि यार बच्चा बड़ा होगा कमा के लेकर आएगा, सही, और बच्चा जो है वो रिस्क लेने निकल जाता है, रिस्क के वजह वो रिस्क लेने निकल जाता है। तो घर वाले
मैं समझता हूँ कि घर का आपका माइंडसेट आपको बनाना पड़ता है, ठीक है ना। आपने उनको अपने बेसिकली हमें, हम जब छोटे बच्चे होते थे तो हमें गाड़ी बॉल क्रिकेट बैट वगैरह ऐसे तो नहीं मिलता था, जिद करते थे हम।
Exactly.
हम तो बड़ी जिद करते थे, हमने तो बड़ी जिदों से बहुत सारी चीजें ली हैं, बहुत जगह चले भी गए, ठीक है। बात ये होती है अब जब जैसे आप बड़े होते हैं ना, तो आपको एक अपने माइंडसेट को बेसिकली चेंज करना होता है अपनी ड्रीम्स के हिसाब से, अपने अचीवमेंट के हिसाब से। तो आपने जो अपने घर वालों को जो है वो मोटिवेट करना होता है, बताना होता है कि अगर मैं आज ये काम करूंगा तो उसका जो है वो पोटेंशियल इतना नहीं है, अगर मैं ये दूसरा काम करूंगा तो, ठीक है। जो मेन कंसर्न ये होता है कि घर, ठीक है बहुत सारे लोगों का होता होगा, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं, मेजॉरिटी मैं समझता हूँ ऐसी हैं जो ये एक कमाने वाला होता है और 3-4 खाने वाले होते हैं, लेकिन आप अपनी सेटिस्फेक्शन जो है वो उसको भी रखें सामने, ठीक है। आप उसके लिए कम से कम 4-5 घंटे दिन के निकालें, ठीक है। जब आपके आपको 4-5 घंटे वो बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि वो आपको मोटिवेट कर रहे होंगे। देखिए मैं जब जॉब छोड़ी थी तो मैंने जॉब के साथ भी ट्यूशंस पढ़ा रहा था और जॉब छोड़ने के बाद भी पढ़ा रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं ये समझता था कि एटलीस्ट मैं घर में दे नहीं सकता लेकिन अपना तो मैं कर लूं पूरा।
Exactly. ये एग्जैक्टली असद, सॉरी मैं यहाँ पर इंटरप्ट करूंगा, एग्जैक्टली यही माइंडसेट जो है ना वो हर पाकिस्तानी स्पेशली जो है मेल सोसाइटी हमारी उसके अंदर होता है कि यार बोझ ना बन जाए कहीं, समझ बात। और ये एक बहुत बड़ा जो है ना साइकोलॉजिकल अफेक्ट होता है हर पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर पाकिस्तान में, कि यार घर पे ना बोझ ना बन जाए, समझ बात।
एक यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूँ, असद की बात से मुझे थोड़ी सी चीज एक समझ में आई तो मैं वो पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। वो ये है कि आपको ना अपनी काबिलियत अपने घर वालों को दिखानी पड़ती है, और वो काबिलियत आप इस तरह दिखाते हो कि आप कुछ कर रहे होते हो, आप उनको छोटा थोड़ा बहुत कुछ करके दिखाते हो, जिसकी वजह से उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। तो जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, उनको कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ उनके बच्चे में इतनी काबिलियत है कि वो ये कर सकता है, तो क्यों ना चांस लिया जाए। तो आपको अपनी काबिलियत अगर आप छुपा के रखोगे और अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं करोगे, और फिर आप बोलोगे अगले दिन को नहीं अब्बा मैंने स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो वो ऐसा तो कभी भी नहीं होगा फिर।
तो यही बात है कि एवरीथिंग इज प्रोग्रेसिव। इंजीनियरिंग में हम 1010 पढ़ते हैं ना, तो वो मशीन है भाई, हम मशीन नहीं, हम ह्यूमंस हैं, वी हैव प्रोग्रेसिव स्टेप्स, ठीक है। देयर इज नथिंग एज सच ओवरनाइट सक्सेस, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हो और उसके जो है वो आपको फल मिलना शुरू होता है। तो आपको इसी तरह दिखाना होता है कि जो आपने बात की कि मेल सोसाइटी जो हमारी है उसमें यही वो एक फैक्ट है डोमिनेंसी के हम बोझ ना बन जाए, तो इस ये एक आपको जो है वो खुद गर्ज और एक अच्छा इंसान बनाता है इस तरह से कि यू आर नॉट रिलाइंग ऑन समवन एल्स, यू आर डूइंग योरसेल्फ एंड यू नो दैट यू हैव टू गिव द रिजल्ट, बिकॉज आपकी टाइमलाइंस जो होती है ना वो भी आपको देखनी होती है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई चीज़ आपने प्लान की जो है वो 6 महीने तो वो उसको 2 साल लग रहे हैं, ठीक है। बी रियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा इसको एग्जैजरेट भी ना करें, और बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कर दें कि ये तो मैं 2 दिन में कर दूंगा, ठीक है, जैसे हम FIB प्रोजेक्ट्स करते थे
रातों रात करोड़पति।
तो बेसिकली आपने ये करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा जहां तक बात की आपने स्पेंडिंग हैबिट्स की, तो इसमें तो कोई ऐसी, मैं तो बोलूंगा कि पता नहीं क्या हमारी सोसाइटी को हो गया कि स्पेंड हम जो है वो खाने पीने पे ज्यादा करते हैं, और अपनी कोई चीज बुक खरीदनी हो, कहीं पार्क में जाना हो, कोई स्पोर्ट्स करना हो, तो उसमें तो हम बहुत डिले करते हैं, बहुत लेजी हो जाते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, अपने पेट के ऊपर इन्वेस्ट करते
हैं। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूंगा ये स्पेंडिंग हैबिट्स से रिलेटेड। पाकिस्तानियों को ज्यादातर ये लगता है कि जैसे तुमने बुक की एग्जांपल दी ना, तो अगर मैं एक बुक खरीदने जा रहा हूँ उसकी कॉस्ट 400 रुपए है, मैं 100 दफा सोचूंगा। एक बिरयानी की एक नई किस्म आती है, जुम्मा बिरयानी, उसकी कॉस्ट 1000 रुपए है, मैं अगले हफ्ते ही खा लूंगा वो, और वो उस वक्त मुझे महंगी नहीं लगेगी, जबकि वो 1000 रुपए की बिरयानी मैंने खाई, दूसरे दिन निकाल दी, खत्म हो गया उसका काम। सही है। और जब बात रही बुक की, तो वो बुक हो सकता है उसके ज्यादा चांसेस हैं, 60-70% चांसेस कि वो मुझे कोई ऐसी बात सिखा जाए जिससे मैं 5000 रुपए बना सकता हूँ। तो हम लोग जो ये गलती करते हैं ना स्पेंडिंग हैबिट्स को कैलकुलेट करने में, तो हमारा यहाँ मेजर जजमेंट का प्रॉब्लम है कि हम सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे। जैसे तुमने भी मेंशन किया, हम अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि हमारा माइंड ग्रो करे या कुछ करे। तो माया यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रहा है।
हाँ, तो मैं यही बोलूंगा कि शेरी ने बहुत अच्छी बात की कि अगर जो बुक है ना वो आपको वो दे जाती है कि शायद आपके साथ वो लाइफ टाइम रहे चीज, वो कुछ सिखा जाती है, तो अब ये चॉइस आपने लेनी है। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन था ना वो थोड़ा सा दब गया बीच में कहीं पर, बिजनेस स्केल नहीं हो पाते, ये मेरा क्वेश्चन था।
हाँ, अब ये वही वाली बात है ना कि आपको पता ही नहीं है कि बिजनेस ग्रो कैसे करना है। ठीक है, आपने असल में इसकी मैं मिसाल ऐसे भी दूंगा कि क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज बहुत है ना, तो इस वजह से जो है बहुत ज्यादा लोग जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहते इस तरीके से कि भाई अपने ही लोग जो है वो धोखा दे देते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ठीक है, हर कोई एक जैसा नहीं होता, यू हैव टू मेक अ वेरी रिस्पॉन्सिबल डिसीजन कि आप क्या किसको दे रहे हो। तो यहाँ पे जो आप बात कर रहे हो ना कि कोई भी जावेद निहारी वाला है या दिल्ली रबड़ी वाला है, तो वो पूरी दुनिया में उसकी जो है वो सोच है, पूरी दुनिया तक जाती है उसकी। ठीक है, जबान में पानी आ गया उसके फैजान के, भिजवा दूंगा भाई, भिजवा दूंगा। तो बात सारी है, बल्कि ये भी देखो स्टार्टअप से स्टार्टअप के एक और आइडिया निकल गया, तुम फ्रेंचाइज ले लो दिल्ली रबड़ी की, उधर बहुत चलेगी।
यही इसी चीज में बात करो कि स्केल अप बिजनेस को किस तरीके से करना
है। बेसिकली माइंडसेट नहीं है कि कोई फ्रेंचाइज भी कोई चीज होती है, कि फ्रेंचाइज मॉडल भी होता है। हालांकि हम बरसों से देख रहे हैं KFC खा रहे हैं, मैकडोनल्ड्स खा रहे हैं, ठीक है, अब तो बास्किन रॉबिन आ गया, पता नहीं कितने हजार तरह के रेस्टोरेंट्स आ गए हमारे पास। हम ये नहीं सोचते कि वो यहाँ कैसे आ गया और हम बाहर नहीं जा सक रहे। ठीक है, ये हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि भाई पूरी दुनिया के वेस्टर्न कल्चर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ईस्टर्न कल्चर को बस यहीं का यहीं रहने दिया है हमने।
एक एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, अभी बीच में अर्तुगरल चल रहा था तो उसकी तलवारें बिक रही है भाई, जाओ सदर में तुम, बोलिए बाजार में, जोड़िया बाजार में। सही है, तो आप देखो ना इससे। जी सब कंटिन्यू।
तो मैं यही कह रहा था कि एक माइंडसेट नहीं है कि किस तरीके से ना मल्टीप्लाई करना है चीजों को। वो बोलते हैं पूरी प्लेट है, पूरी प्लेट मैं ही खाऊं। ठीक है, वो सोच ही नहीं है कि हर कोई अपने नसीब का खाएगा कितना भी कर लो। ठीक है, आप किसी और को फ्रेंचाइज दे रहे हो, मॉडल बना रहे हो, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैं और रवि ना बड़ी एक बात करते हैं इस चीज के ऊपर कि चाय वाले का होटल है ना, एक होता है क्वेटा चाय वाला, एक होता है न्यू क्वेटा चाय वाला, और एक होता है कि न्यू कोटा चमन चाय वाला।
चमन की बात भी एक और चीज होती है,
सब चाय बेच रहे, कोई स्टारबक्स नहीं बेच रहा, कोई ये चीज नहीं बेच रहा कि भाई आपकी एक फ्रेंचाइज मॉडल होगा कि 20% मैं लूंगा, 80% वो लेगा। फ्रेंचाइज मॉडल का रूल ये होता है कि रॉयल्टी पे काम होता है, आपका नाम बिकता है। ब्रांड बनाने का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना फूड के अंदर, तो मैंने देखा नहीं है। ठीक है, ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। अब आप देखें यूरोपियन को देख लें, अमेरिकन को देख लें, इवन अब तो आप उसमें टर्की में भी चले जाएं, तो ब्रांड बनाने का कॉन्सेप्ट एक है कि आप जो है वो अपने नाम को इस तरीके से ब्रांडिंग उसकी करें, उसकी पोजीशनिंग ऐसी करें कि आपकी जो पूरा अपने SOPs ऐसे बनाएं कि वो पूरा चीज़ जो है कहीं भी जाए तो उसी SOPs के तहत ट्रांसलेट हो और आपको उसका पार्ट भी मिले बिकॉज यू हैव डेवलप्ड एन एसओपी आफ्टर ट्राइंग मेनी 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 न्यू प्रोसेसेस अंडर योर ओन रिस्क. ठीक है ना, आप उस चीज के जो है ना रॉयल्टी ले रहे होते हो कि आपने कितनी अच्छी चीज बना ली. मिसाल के तौर पे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने कैसे काम करता है, रॉयल्टी पे ही करता है ना, कि उसने लाइसेंसिंग फी रखी हुई अपनी मिनिमम. ठीक है, वो बोले कि नहीं पूरी मैं लूं, तो भाई पूरी लेना होगा तो ग्रो कैसे करोगे, दूसरे ऐसे ही थोड़ी ग्रो होता है. ग्रोथ के लिए यू हैव टू शेयर, यू हैव टू कोलैबोरेट, यू हैव टू मेक टीम्स, एंड दैट इज द रीजन यू ग्रो. यू डोंट ग्रो ओनली बाय योरसेल्फ, यू हैव टू बिल्ड अ टीम. एक लीडर होता है, उसके नीचे उसके बहुत सारे जो है वो चाहने वाले होते हैं, उनके फॉलोवर्स होते हैं, तो वो उनको जब सपोर्ट करेंगे तभी वो लीडर कहीं जाके बनता है. ऐसे ही तो नहीं शेरी ने वोट दे दिया इमरान खान को.
भाई मैंने कहा दे दिया?
अस्तग़फिरुल्लाह. भाई पॉडकास्ट
के बाद बात करेंगे, पॉलिटिकल गुफ्तगू बना है बिल्कुल यहाँ पे. अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास स्पेशली, जितनी ये ब्रांडिंग से रिलेटेड बात हुई, अब थोड़ा सा एक शिफ्ट है क्वेश्चन के अंदर. वो शिफ्ट ये है कि जैसे जैसे ये अपवर्क और फाइवर का एनवायरनमेंट आता जा रहा है, तो एक अजीब सा एक मसला है. अपवर्क और फाइवर पे ज्यादातर सॉफ्टवेयर बेस्ड चीजें आ रही हैं, तो जो हार्डवेयर वाले लोग हैं, जो हार्डवेयर की तरफ जाना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है अगर वो डायरेक्टली स्टार्टअप की तरफ नहीं जाना चाह रहे? जैसे हमने बात की ना इंक्यूबेटर्स की, हमने बात की कि एक पूरा प्रॉपर चैनल है. अब एक वन मैन आर्मी, एक बंदा है, उसके पास एक सोल्यूशन है, वो एक उसके पास एक आइडिया है, वो अपना स्टार्टअप शुरू नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है. तो वो पाकिस्तान के लेवल पे वो सोल्यूशन, हार्डवेयर सोल्यूशंस कैसे बेच सकता है?
अच्छा, ये आप बात कर रहे हैं थोड़ी सी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आपने बात कर दी. बेसिकली बात सारी है कि आपने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हम अभी बनाना जा रहे हैं, हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं, कि बेसिकली डिजिटल प्रोटोटाइपिंग प्लेटफॉर्म हमारी कंपनी जो है वो एक लॉन्च कर रही है इंशाल्लाह वेरी सून. तो उसमें हम जो है पूरे पाकिस्तान में जिन जिन लोगों को हार्डवेयर प्रोटोटाइपिंग करनी होगी, हार्डवेयर डेवलपमेंट करनी होगी, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी उसने डेवलपमेंट करनी है उसका आइडियाज, उसके एक पूरा पैरामीटर सेट करे, और जो रेलेवेंट उस प्लेटफॉर्म पे लोग होंगे जो इस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं, वो आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे और उसको जो है एक प्रोडक्ट की शक्ल में लेके आएंगे, ताकि आपका जो है प्रोडक्ट, बेसिकली प्रोडक्ट प्रोटोटाइपिंग क्या है, बेसिकली MVP है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट इज वन थिंग दैट यू कैन शोकेस टू द पीपल अराउंड यू एंड गेट फीडबैक ऑन दैट. ठीक है,
बिल्कुल.
अब आप ये कैसे कर सकते हैं? मुझे याद है जब हम GIK के लिए रोबोट बना रहे थे, मैं और माया भी था उसमें, तो हम खुद ही वहां खड़े हो गए ना, मशीनिस्ट को बोले हाँ भाई ऐसे बनाना, ऐसे कट करना, ऐसे सुराख करना. ठीक है, उसको मैं ड्राइंग भी दे दूं, उसको समझ में ही नहीं आ रही. तो मेरी स्किल, तो मैंने तो सीखी स्किल ये कि भाई आइडिया बनाना है, ड्राइंग बनानी है और काम करवाना है. वो यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं रहा जो हमें बताया जा रहा है कि इस तरह होगा, तो मैं तो खुद कराना पड़ रहा था. तो जब ये टेक्नोलॉजीज आई, CNC, लेजर, 3D प्रिंटर्स, तो इनको जो है यूटिलाइजेशन उसकी कैसे की जाए? तो इसकी यूटिलाइजेशन ऐसे ही कर सकते हैं कि आप एक प्लेटफॉर्म बनाएं, उस पर आप डायरेक्ट डालें और आपको अगले दिन वो चीज़ मिल जाए. उसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं.
बिल्कुल,
आपने एक ड्राइंग मशीन रीडेबल बनानी है और उसको डाल देना है, लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो यू हैव टू हैव एक्सप्लेनेशन ऑफ अ वेरी गुड आइडिया. तो हम क्या करते हैं, हम जो है अपनी कंपनी के अंदर उस चीज़ को, आइडियाज जो आपके पास होते हैं उसको हम डिस्प्ले करते हैं एक 3D मॉडल के अंदर, और वो मॉडल फिर आप जो है अपनी आसपास के लोगों को दिखाते हैं, उससे मशवरा करते हैं, फिर उसको दोबारा जो है वो रीआइट्रेट करते हैं. क्योंकि आइडिएशन की फेज में बहुत ज़्यादा आपको ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ता है कोई भी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए. तो आप जब ये चीज़ बना लेते हैं तो फिर हम जो है उसको क्या करते हैं, रियलिटी में लेके आते हैं बाई यूजिंग द टूल्स, द राइट सेट ऑफ टूल्स, द राइट सेट ऑफ स्किल्स दैट वी हैव दैट आर प्लेटफॉर्म पोजेस. तो वी कैन कन्वर्ट द आइडियाज टू रियलिटी. तो उस तरीके से एक बंदा भी हो हमारे पास, एक हमने रिसेंटली प्रोजेक्ट किया था, बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी का ही कोई जूनियर था, उसको जो है वो सोविनियर्स बनाने थे, एंड ही जस्ट हैव एन आइडिया that he has bought some of this product and he wanted to convert. So alhamdulillah, we were able to do that. So a single person has now the power of a platform to basically evolve and convert his idea to a reality.
यहाँ मैं दो चीजें क्विकली ऐड करूंगा, यहाँ एक कमेंट आया हुआ था, फैजान ने अभी स्क्रीन पे भी शो किया हुआ था, वो कमेंट ताबिश भाई ने किया है, एंड दिस टैक्सेशन सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू कीप अ लो प्रॉफिट ऑन फ्रेंचाइज। नहीं, ये कमेंट शायद इतना ही है। फ्रेंचाइज देने के बाद एफबीआर को बताना पड़ेगा और रॉयल्टी पर टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि एंड दिस टैक्सेशन सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू कीप अ लो प्रोफाइल लो प्रॉफिट ऑन फ्रेंचाइज। यार ये टैक्सेशन वाले इश्यूज तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंटल और पॉलिसीज के जो इश्यूज हैं वो तो चलते रहेंगे, लेकिन अगर आप इन पॉलिसीज को लेके बैठे रहोगे तो आप कभी नहीं ग्रो कर सकोगे। आपको वे अराउंड ढूंढना है, आपको सोचना है कि मैं सॉल्यूशन किस तरह निकाल सकता हूँ इसी एनवायरनमेंट में, क्योंकि हर बंदा तो बाहर नहीं जा सकता और हर बंदा बाहर जाके स्टार्टअप भी नहीं शुरू कर सकता, इतना आसान नहीं है। आपको तकरीबन भी बाहर जाना है, अब जैसे मैं अगर फैजान की एग्जाम्पल लूँ, फैजान ने बाहर बहुत काम किया, ये बेचारा छुप भी गया, ये इसने बेचारे ने बाहर बहुत काम किया है, लेकिन बाहर बहुत काम करने के बाद भी 4-5 साल लगाने के बाद भी अब स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखा है। तो अगर आप स्टार्टअप फॉरन करना चाहते हो और आपके पास पॉलिसीज और टैक्सेशन के इशू हैं तो आपको वे अराउंड ढूंढना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में इंक्यूबेटर फर्म इसमें काफ़ी हेल्प कर सकती हैं आपकी। लेकिन यहाँ मैं एक छोटा सा एक कन्फ्यूजन है मेरी है, शायद वो सबकी भी हो सकती है, या मैं ही इतना थोड़ा सा कम इल्मी है मेरे अंदर, कि ये जो तुमने मेंशन किया हार्डवेयर वाला, जो मैं भी तुमसे क्वेश्चन कर रहा था कि जो तुम लोग हार्डवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, इसमें और एक इंक्यूबेटर फर्म में क्या फर्क होगा?
देखिए, इंक्यूबेटर तो बेसिकली आपको एक नॉलेज दे रहे हैं ना कि हाउ टू रन अ बिजनेस, हाउ टू ग्रो अ बिजनेस, व्हाट थिंग्स आर एसेंशियल फॉर डूइंग बिजनेस एंड व्हाट हाउ कैन यू मल्टीप्लाई इट्स इफेक्ट सो दैट यू कैन हैव रैपिड ग्रोथ। बिकॉज स्टार्टअप्स की सबसे ज्यादा खूबी होती है कि वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, ठीक है, बिकॉज उनके वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आते हैं जो आज से पहले मार्केट में नहीं थे, या थे तो वो उस तरीके से नहीं थे जिस तरीके से वो लेके आ रहे हैं। तो इनक्यूबेटर इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। जहाँ तक बात है हमारी प्लेटफॉर्म की, वो प्लेटफॉर्म तो हम आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो हमने पेन देखा एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने में, तो हम वो पेन नहीं चाह रहे कि हर कोई देखे और उसको जो है वो फील करे, बल्कि जो उसके जहन में है, जो उसके माइंड में है, उसको वो बना सके। बिकॉज यू नो, मुझे अभी पता भी चला रिसेंटली कि फैजान ने भी एक स्टार्टअप शुरू किया है एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर, तो उसने एक टर्म यूज किया था टाइम टू मार्केट। तो बेसिकली इन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एरा वी हैव टू बी अ वेरी शॉर्ट ऑन टाइम टू मार्केट एंड वी हैव टू फेल फास्ट। फेल फास्ट इज द की टू ग्रोथ। बिकॉज आपको पता है कि जब एक लाइट बल्ब बनाया था एडिसन ने, तो उसने ये कहा था कि आई हैव नॉट फेल्ड 1000 times, I have explored 1000 ways in which the bulb cannot be created.
Exactly.
So what he did, he failed fast. He tried to mitigate all those issues, all those problems, ki is tarike se bulb acha nahi banta. Aur ab kitne saal ho gaye, theek hai na, hum bhi apne aas paas ke logon ko bolte hain ki yaar ye bulb jo hai usne banaya tha. To usne banaya tha to usne itni mehnat ki na, usne itne tarike ijaad ki, never failed because he always had a belief in himself that I can create something. To jo time to market wali baat hai na, wo yahi wali baat hai ki you have to have certain things ki aapne jo hai product leke aane market mein, aapne in cheezon mein nahi padna ki main ye isko samjhane mein aapka itna time guzar dun, usko jo mera end result hai wo samajh nahi aa raha. Main aapko ek interesting project share karta hu. Ek product tha uska POS सिस्टम होता है ना, POS सिस्टम जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में लगे होते हैं, तो एक कंपनी हमारे पास आई, उसका काम था सॉफ्टवेयर डेवलप करना. तो उसने अपना सॉफ्टवेयर, बेसिकली सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर इंस्टॉल होगा, ठीक है, तो हार्डवेयर जो है उसका डिस्प्ले चाहिए था उनको, तो उन्होंने हमसे क्या बनवाया, एक प्रोडक्ट बनवाया, ठीक है. प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको जो है वो अपने डिस्प्ले सेंटर में लेके गए, ठीक है. तो उसी वक्त उनकी जो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग है ना, बहुत फास्ट हो गई. किस वजह से, कि अगर वो नॉर्मल उसमें जाते हैं कि चाइना में पहले सोर्स करते हैं, फिर उसको यहाँ शिप करते हैं, फिर यहाँ टेस्ट करते हैं, फिर जो है उसको डिस्प्ले करते हैं, तो उनका जो टाइम है ना बहुत ज़्यादा उसी में लग जाता. फिर आपको पता है करेंसी भी आपने बाहर पेमेंट करनी है, उसके कन्वर्जन के अलग मसले, भेजने के अलग मसले, तो ये तमाम चीज़ें बिल्डअप हो जाती हैं और आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेती हैं, और आपका जो एक्चुअल गोल है ना उसकी तरफ आपकी सारी एनर्जी जब आप लूज कर देते हैं, तो एनर्जी ड्रेन कर देती है. वी शुड फोकस ऑन दोज objects or on those work which should not drain our energy but multiply our energy. वो कैसे होता है कि आप कोई भी एक काम करते हैं दिन में, ठीक है, तो दिन में वो काम अगर आप कर लें जो आपने प्लान किया हुआ, तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है. जब सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है तो यू हैव द मोटिवेशन टू डू इट अगेन द नेक्स्ट डे. और अगर वो काम आपसे नहीं हो ना, आप सारे काम हो जाएं, आप बोलेंगे आज का दिन जाया, फारिग, कोई काम नहीं किया.
अच्छा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड.
सही है. तो बहुत सारी चीजें जो है ना, हम टॉपिक से थोड़ा सा क्या बोलते हैं मोटिवेशन वाली साइड पे निकल गए, तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन रेडी हो गए, तो मैं पूछूंगा बारी बारी से. तो सबसे पहले तो ब्रांडिंग से स्टार्ट करते, जो असद ने ब्रांडिंग की बात की, वही पुराने सवाल से कनेक्ट करता हूँ अपने, जहाँ पर मैंने क्या बोलते हैं स्केलेबिलिटी की बात की थी. क्या जरूरी होता है ब्रांडिंग के लिए? दो चीजें मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, कस्टमर सर्विस और मार्केटिंग. और इन दोनों चीजों को तुम कैसे देखते हो पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के अंदर, कि क्या मार्केटिंग करनी चाहिए, किस लेवल पे करनी चाहिए, कस्टमर सर्विस का क्या लेवल होना चाहिए? एक एग्जांपल भी दे देता हूँ कि अमेजोन जो है फॉर एग्जांपल, वो ब्रांड कैसे बनता है, वो कस्टमर की लॉयल्टी बाय करता है कि अगर हम कोई चीज सामान मंगवा भी लें तो हम उसको इजीली रिटर्न कर सकते हैं. जस्ट वन एग्जांपल.
अच्छा देखें, ब्रांडिंग की जहां तक बात है तो मैं इसमें अपना थोड़ा सा इनसाइट ये शेयर कर दूं कि बेसिकली ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट व्हाट यू से being very true to what you are committing. ठीक है, अगर आप commit कर रहे हैं कि आप इसके जो है वो इतने पैसे charge कर रहे हैं, या ये इस level की product दे रहे हैं, इसके साथ ये solutions provide कर रहे हैं, so be very true. ठीक है, don't जो है कहते हैं ना कि commit करो तो उससे बढ़ के दो. ठीक है, जब आप बढ़ के देते हैं ना, then you become a brand. Then people come to you. For example, आप किसी अच्छे शोरूम में जाएं, ठीक है, उस शोरूम में जो है आपको कोई बंदा ग्रीट करे, ठीक है, ग्रीट करके आपको जो है वो गाड़ियां दिखाए, गाड़ियों के स्पेक्स बताए, गाड़ियों के स्पेक्स समझाए, गाइड करे पूरा, ठीक है, और आप फिर भी बोल रहे, आप उसको कंटिन्यूसली ये बोले जा रहे हैं कि यार ये बहुत महंगी है, वो फिर भी आपको है ना ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि आप जो है खरीदने वाले, लेकिन आपको गाइड करे जा रहे हैं, ठीक है. तो जब आप उस शोरूम से बाहर निकलेंगे तो आपकी क्या फीलिंग होगी? फीलिंग ये होगी कि यार नहीं पैसे, लेकिन फिर भी मैं ये खरीदूंगा.
Exactly.
तो बात ये होती है कि आपने, इट्स नॉट कि आप खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते, बात ये होती है कि जो आप चीज खरीदना, जिस चीज खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, वो वैल्यू आपको क्या दे रहा है, आपको वो रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको अच्छी तरह ग्रीट कर रहा है, आपको जो है वो लेके हर चीज गाइड कर रहा है, अच्छा मशवरा दे रहा है, तो आप जो है उसके जो है फैन बन जाते हैं.
एग्जैक्टली.
तो ब्रांडिंग, एप्पल जो है ना, एप्पल लोग बोलते हैं यहाँ पे बहुत महंगा है, फिर भी खरीदते हैं लोग, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है ना कि दे आर नॉट देयर कस्टमर्स बट दे आर देयर फैंस. ठीक है, ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट फैंस. की मिसाल के तौर पर आप, फॉर एग्जाम्पल, मैं शहवार से बात करूंगी, शहवार तुम्हें क्या पसंद है खाने में, कौन से रेस्टोरेंट में जाना चाहोगे?
यार ये तो बहुत मुश्किल सवाल कर लिया तुमने, जहाँ अच्छी बिरयानी मिल जाए.
देखो ये बात की, इसने बिरयानी की बात की, ठीक है ना, अब मैं फैजान से पूछूं, फैजान तो मेरे ख्याल से काफी टाइम से नहीं है पाकिस्तान से, आई थिंक इसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी कौन से बिरयानी यहाँ पे अच्छी है
पाकिस्तान में? हाँ बड़ी क्या बोलते हैं, बड़ी लो लेवल चॉइस है, लेकिन ये कि अल्नास बिरयानी जो है वो मुझे बहुत बड़ी पसंद है.
हाँ, तो आप देखो, मैं अल्नास की इसने बात की ना, इसने अपने काम की चीज पकड़ी है, ठीक है ना, अल्नास पूरे कराची में हर इलाके में मिलेगा आपको.
एग्जैक्टली.
ठीक है ना, वो उस तरह की ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन उसके टारगेट कस्टमर जो है ना डिफरेंट है. ठीक है, उसके टारगेट कस्टमर डिफरेंट है. अब मैं उससे ऊपर एक चीज आता हूँ, एक्सक्लूसिव पे आता हूँ. अब आजकल चल रही है, खैर खाने के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होगा, लेकिन इस बात को कंप्लीट मैं इसी तरीके से करूंगा कि गौसिया की नली बिरयानी है, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा चल रही है. तो इसकी वजह ये कि वो एक्सक्लूसिविटी है, कि हर चीज जो है वहां पे आपको बंदा, आपने नीच डेवलप कर ली कि इस तरीके से आपने इस चीज को फोकस करना है, और इसी चीज को जो है वो आप फोकस जब करेंगे तो वो उसमें आपको कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा. कॉम्पिटिटर नहीं हो तो ऑटोमेटिकली आपकी एक ब्रांडिंग है. तो ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट बींग कमिटमेंट, being about creating trust and providing what you have committed. providing the best thing that you can in your capacity and guiding right. It's not about ki yaar ye mera product hai ye khareedna hai khareedo warna aage jao, theek hai na. So customer service ki to bahut zyada Pakistan mein need hai, and I think customer service agar jiski achhi hai na, aapke tips pe honge unke naam. Jo jin Miniso hai, basically Miniso is what a franchise of Japan, theek hai, lekin it's all over the country, all across the metropolitan cities. So unhone kya ek nominal amount mein aapko jo hai wo acche products provide kar rahe hain. So it's all about ke what are you providing.
Chalo to is taraf mujhe lagta hai ab hum jo hai na aakhir ki taraf ja rahe hain bilkul. Aur
Faizan
phas gaye to yahan pe bas main jaldi se ye chahunga कि अगर तुम कंक्लूड करना चाहो आज की हमारी पूरी पॉडकास्ट को कि किस तरह से कंक्लूड करोगे.
अच्छा देखें, स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात जब हुई ना तो देखें मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगा, इस हवाले से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि इकोसिस्टम जो है वो एवर इवॉल्विंग थिंग है, ठीक है. आपने उसके अंदर कंटिन्यूसली जो है ना डेवलपमेंट देखनी है, लेकिन आप जब कदम रखेंगे ना उस इकोसिस्टम में तो आपको चीज़ें मिलना शुरू होंगी. बात सारी ये है कि जब आप डेवलपमेंट करते हैं कोई चीज़ लेके आते हैं मार्केट में, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, लेकिन आपने राइट वे में जाना है. तो मैं समझता हूँ कि अब तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ चुकी है, अब तो काफ़ी जगहों पर इनक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स और इन्वेस्टर्स बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं जो यहाँ की मार्केट को समझ रहे हैं. जैसे ग्रोइंग सेक्टर आप देखो, ई कॉमर्स का ग्रोइंग सेक्टर है, ठीक है. अब ई कॉमर्स में आपने सिर्फ आपको स्किल्स चाहिए, और स्किल्स के साथ साथ आपको एक दो तीन लोग ऐसे चाहिए जो आप फ्रीलांस में काम करके आप एक चीज़ डेवलप कर लें, और फिर आप एक राइट इन्वेस्टर के पास चले जाएं, तो आपको अगर आपकी उसमें पोटेंशियल है बिजनेस मॉडल में तो आपको ऑलरेडी लोग जो है वो सर आएंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो ई कॉमर्स सेक्टर बहुत बूम करा है इधर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत बूम करा है, हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो अभी ग्रोइंग है. तो पोटेंशियल तो बहुत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल उस चीज में देखा जाता है कि वहां पे यूजर्स कितने हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है उसमें प्राउड फील करे कि उसके जो है 25 करोड़ आबादी है.
Exactly.
तो माशाल्लाह जो है वो हमारा पोटेंशियल बहुत है, उस पोटेंशियल को चैनलाइज करने की जरूरत है, और जो हमारे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है ना वो हमारी प्रॉब्लम्स ही हमारी अपॉर्चुनिटीज है.
बिल्कुल.
Exactly. लोग बोलते हैं यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है, लाइट चले जाती है, तो लाइट चाहती है तभी तो सोलर पैनल बिक रहे हैं, तभी तो यूपीएस बिक रहे हैं, तभी तो इन्वर्टर बिक रहे हैं आपके, तभी तो जनरेटर्स बिक रहे हैं, ठीक है. गैस का इशू है, पानी का इशू है, गंदगी का इशू है, हेल्थ केयर सिस्टम फेल है. तो फायदा है ना ये सब चीज़ का, नए आने वाली जनरेशन जो है उसमें सोल्यूशन क्रिएट करे, क्यों नहीं करती, करेगी तो उसको लोग अप्रिशिएट भी करेंगे और उसकी सर्विस भी इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट्स भी बाय करेंगे, ठीक है. तो आपने चीजों को जो है वो एज अ चैलेंज लेके उसको ओवरकम करना है, ना कि उसको अंदर उसके नीचे दब जाना है. तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल भी जाती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं भी मिलती हैं, लेकिन ऑब्वियसली यू लर्न विद टाइम, और आप जो है उसका सलूशन निकाल सकते हैं. अगर नहीं, क्योंकि आप देखें ना ग्रोइंग कंपनीज टेक्नोलॉजी में कितनी है. लास्ट टाइम वी आर द आई थिंक वी आर द टॉप, वी कम इन द टॉप थ्री फ्रीलांसिंग वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है ना. टॉप थ्री में आते हैं हम लोग पाकिस्तान में, तो वो कैसे आ रहे हैं, उसकी कोई वजह है ना कि लोग जो है टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं, नई जनरेशन आ रही है उसकी तरफ और उसको जो है वो यूज कर रही है. तो जब इतने लोग का एक्सपोजर है तो उस एक्सपोजर को यहाँ रख के चैनलाइज भी किया जा सकता है ना.
बिल्कुल.
टैलेंट नहीं मिलता तो टैलेंट मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं नहीं समझता, क्योंकि यू हैव एक्सेस टू द राइट पीपल अराउंड द ग्लोब, ठीक है. यू हैव मैनी प्लेटफॉर्म दैट यू कैन कनेक्ट, यू हैव द इंटरनेट विथ यू, यू हैव द राइट थिंग्स अवेलेबल विथ यू, ठीक है. तो बात सारी ये कि उसको आप चैनलाइज करें, उसको यूज करें, और उसको जो आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है ना उसको राइट वे में राइट जगह फिट करें. क्योंकि आपने अगर उसको वहाँ पे चैनलाइज नहीं किया तो आप जो है फिर कहेंगे कि मैं फेल हो गया, ठीक है. तो कुछ चीजें यू हैव टू लर्न द पोटेंशियल दैट व्हाट आर यू लैकिंग एंड व्हाट type of teammates you require.
तो अब यहाँ पे मैं फैजान से पूछूंगा कि फैजान अपने कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दो, फिर उसके बाद तुम इसको मतलब फिर हम एंड की तरफ चलेंगे और इसको यहीं खत्म करेंगे।
बल्कि मैं तुमसे बोलने वाला था ये।
हाँ, क्योंकि अब मैं ड्राइविंग सीट पे आ गया हूँ।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरा जो है वो आई एम रियली सॉरी, इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था।
अच्छा, वहां भी होता है
यार, वो पता नहीं, आज कुछ हम लोग चीजें ट्राई कर रहे हैं ना आजकल, तो इस वजह से
देख लो पाकिस्तानियों, जर्मनी में भी यही हालात है
भाई, उससे भी बुरे हालात हैं, छोड़ दो तुम, सही पाकिस्तान में फिर भी चलो, खैर उस पर एक अलग से बात होगी। तो मेरा यही है कि असद ने बहुत अच्छी बात की और मैं उससे एग्री करूँगा कि मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा, ब्रांडिंग वाली चीज़ से। कस्टमर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब कस्टमर सर्विस की बात की जाती है तो पाकिस्तान में अभी भी कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, सही है, कोई कस्टमर जो है वो पे करना नहीं चाहता, सही है, ऑनलाइन। और फिर इसी तरीके से दूसरी तरफ से जो हमारे दुकानदार हैं, वो तो तुम्हें पता है फेमस स्लोगन है हमारा कि कोई बयाना नहीं, कोई वापसी नहीं, सही है। वापसी क्यों नहीं भाई, ये सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो मिस करते हैं पाकिस्तानी, वापसी क्यों नहीं लोगे यार। मतलब एक ख़राब चीज़ है जो कस्टमर को पसंद नहीं आए तो आपको वापस लेनी होगी, अगर आपको उसे वापस बुलाना है तो वो चीज़ वापस लेनी होगी आपको, सही। ये बहुत बड़ी चीज़ जो है वो मिस करते हैं पाकिस्तानी। तो अमेज़न की मैंने एग्जाम्पल इसी वजह से दी थी कि लोग चीज़ यूज़ करके भी देते हैं और वो खुशी खुशी इस चीज़ को लेते हैं और दूसरी नई चीज़ जो है वापस करते हैं। अब वो चीज़ नहीं दे रहे, वो कस्टमर खरीद रहे हैं। अब अगली दफ़ा क्या होता है, वो कस्टमर दोबारा जाता है और पहले उसने अगर 500 की शॉपिंग की थी तो वो 5000 की शॉपिंग करता है और उसका जो नुकसान जो होता है पुराना वाला वो कंपनसेट हो जाता है। ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है, सही, अगर आपको ब्रांड बनाना है तो इस चीज़ में मेरा ये है। बाकी मैं इसके अंदर जो है कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये दूंगा कि एक असद ने बात की थी कि टाइम टू मार्केट, और मेरी कंपनी का फोकस जो है वो टाइम टू मार्केट और जो हमारे आरएनडी के प्रोसीजर्स हैं वो मैंने अपने 5 साल के एक्सपीरियंसेस के बेस पे इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किए कि हम प्रोडक्ट को फास्टेस्ट जो है वो मार्केट में रख सकें इन अ प्रोटोटाइप फेज, जिस तरह के उसने बताया असद ने। क्योंकि मैं इस चीज़ से बिलीव करता हूँ कि जितनी भी टेस्टिंग कर लें, सही, मैं इसको इस तरीके से बोलूंगा कि टेस्टिंग विल गिव यू अ सिमुलेटेड रिजल्ट बट शिपिंग विल गिव यू द रियल रिजल्ट। तो शिपिंग करना, शिप करना प्रोडक्ट को जो है वो बहुत जरूरी है, मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं आज के।
तो जबरदस्त, फिर बस जस्ट मेरा जो है कंक्लूजन रिमार्क्स कुछ बचा नहीं है क्योंकि तुम लोगों ने सब कुछ बोल दिया है मोस्ट प्रोबेबली।
अच्छा, मैं एक मैसेज देना चाहूंगा।
बिल्कुल बिल्कुल,
मैसेज ये है कि देखें, आप चले अपने ऊपर इन्वेस्ट जो है वो कम करना चाहें तो कम करें, लोगों में कम उठे बैठे, लेकिन बुक्स जरूर पढ़ें। बुक्स गिव यू है ना अनफेयर एडवांटेज, ठीक है ना। नॉलेज जो है ना, नॉलेज वो आपको दोस्तों में बैठने से तो मिलती है, लेकिन बुक पढ़ने से ना आपके अंदर समा जाती है बिल्कुल। तो मैं कुछ बुक्स हैं वो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर वो आप लोग पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। एक तो अंदर अपने अंदर ना हैबिट्स डिवेलप करें, उसके लिए पावर ऑफ हैबिट्स जो है वो पढ़ें बाय चार्ल्स डग। इसके साथ साथ जो है वो हमारे सबके आइडियल और मुसलमान उम्मत के आइडियल सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किताब है शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अल आज़मी की, वो ज़रूर पढ़ें ताकि आपको उनकी तमाम सीरत ज़िंदगी के बारे में पता चले। फिर 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स है, ये पढ़ें। और अगर आपने थोड़ा सा बिजनेस की तरफ फोकस रखना है और सीखना है कि बिजनेस क्या होता है तो रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़ें बाय रॉबर्ट, बिल्ड टू लास्ट एक किताब है, बहुत ज़बरदस्त किताब है, ये पढ़ें, और गुड टू ग्रेट। तो ये चंद बुक्स हैं, इनको आप एक एक करके पढ़ें और साथ साथ अपना काम करें, फिर आपको जो मज़ा मिलेगा ना वो आपको पता चलेगा कि असल काम कैसे होता है।
ज़बरदस्त ज़बरदस्त।
तो बस मेरा बस पॉइंट यही है यहाँ पे कि पूरी पॉडकास्ट में हमने जितनी बातें असद के साथ डिस्कस की वो हम बहुत सारी बातें ऐसी भी थी जो रिपीटेडली सुनते रहते हैं अपनी एनवायरनमेंट में, मीडिया में भी और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे भी। तो मेरा इन एंड आउट मैसेज यही रहता है कि यार बहुत चांस है पाकिस्तान में, बहुत रूम है, और पाकिस्तानी जो वो किसी भी टैलेंट में कम नहीं है। अगर वो आइडिया को सिर्फ रेप्लिकेट भी कर लें तो वो पाकिस्तान में बहुत आसानी से बेच सकते हैं उन चीज़ों को, अगर वो थोड़ी सी रूल सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर लें और सेट इस तरह से फॉलो कर लें कि जाहिर सी बात नहीं है उनको इलॉन मस्क को फॉलो करना पड़ेगा, उनको इलॉन मस्क को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो चीज़ों को रेप्लिकेट करें और जो है वो अपने सेट ऑफ रूल्स बना के रखिए, इंशाल्लाह वो जरूर कामयाब होंगे।
अच्छा शरी, मैं यहाँ पर एक बात ऐड करूँगा, जैसे तुमने इलॉन मस्क की बात की
तो यार मुझे पता था
जो है ना, मैं तुम्हें यहाँ पर मैसेज करूँगा, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, ये सारे के सारे जो हैं वो आउटलायर्स हैं एक यंग स्टार्टअप के लिए। ये मैं आपको यहाँ पर, चाहे बड़ी बात है छोटी बात है जो भी है, सही है, मैं अपनी एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बोल रहा हूँ कि ये लोग जो है वो आउटलायर्स हैं यंग स्टार्टअप्स के लिए। वो लोग कुछ डिफरेंट कर रहे हैं और वो कुछ डिफरेंट तरह की इनोवेशन और किसी डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर जो है ग्रो हुए, सही है। हमारे पाकिस्तान की अगर बात की जाए, हमारा इन्वायरमेंट डिफरेंट है, मोटिवेशन ली जा सकती है लेकिन फॉलो नहीं कर सकते, समझ मेरी बात। फॉलो आपने, अगर आपने किसी को फॉलो करना है ना, तो आप देखें पिछले 3 साल में वो कौन से स्टार्टअप थे जो कामयाब हुए, क्योंकि वो आपको वो वेरिएबल्स प्रोवाइड करेंगे जो आपसे ज़्यादा रिलेटेड होंगे। इंस्टेड आईफोन, सही क्या बोलते हैं, स्टीव जॉब या उसने जिस इन्वायरमेंट में किया, या क्या बोलते हैं बिल गेट्स, उसने जिस इन्वायरमेंट में किया, सही है। इंस्पिरेशन लेना बहुत ज़रूरी है, उनकी बातें भी सुने, लेकिन एग्जैक्टली उनको फॉलो करना ब्लाइंडली, ये जो है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा।
ब्लाइंडली फॉलो तो मैंने किसी भी को करने को नहीं कहा, मैंने कहा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशंस आप क्रिएट कर सकते हो, आप दूसरे लोगों को देखो, उनकी अच्छी बातों को अडॉप्ट करो और स्टार्टअप शुरू करो यार, बहुत हो गया।
ये चीज जो है ना, मैं बस ऐड करना चाहता था, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ बहुत बहुत ही टॉक्सिक किस्म का ट्रेंड आ गया है।
इस टॉक्सिक ट्रेंड को हम जरूर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अब लोग हमें पकड़ के मारेंगे अगर अब हमने इससे ज्यादा कुछ बोला तो।
चलो सही है, जबरदस्त। असद थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत कम बात की, इससे भी ज्यादा बात हो सकती थी, और एक सेशन और बनता है रबी के साथ और तुम्हारे साथ जॉइंट सेशन, इंशाल्लाह दोबारा तुम्हें बुलाएंगे। और बाकी शेरी थैंक यू सो मच कवर करने के लिए, और हम देखेंगे जो टेक्निकल मसले मसाइल हैं इनको जो है वो हल करने की कोशिश करें। तो पॉडकास्ट को हम लोग यहीं पर ही खत्म करते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी,
दिस इज द शॉर्ट स्टोरी, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।